पनियम संख्या 22
27 दिसंबर 2023 23 दिसंबर 2030 से यहूदा के गोत्र का सिंह एक विशिष्ट क्रम में भविष्यवाणी संबंधी सत्यों की मोहरें खोल रहा है। उस क्रम का सहज पता फ्यूचर फॉर अमेरिका की वेबसाइट पर प्रकाशित लेखों की समीक्षा करके लगाया जा सकता है। हाल के महीनों में जिन सत्यों की मोहरें खोली गई हैं वे अनेक और अत्यंत गहन हैं। ये क्रम यादृच्छिक नहीं है, ये उद्देश्य मूलक है। ये अनुक्रम स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य मूलक क्रमिक प्रक्रिया को चिह्नित करता है जिसे मसीह यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में कलीसिया के लिए अंतिम परीक्षण संदेशों की मोहरें खोलते समय और तत्पश्चात संसार के लिए संपन्न करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यहूदा के गोत्र का सिंह उस पुस्तक को ग्रहण करता है जो 7 मोहर बंद है और उन मोहरों को एक एक करके क्रमानुसार खोलता है।
उनके क्रमानुसार उद्घाटित होंगे।
इन 7 गर्जनों के अपनी वाणी उच्चारित करने के बाद लघु पुस्तक के विषय में दानियल की भांति यूहन्ना को याग मिलती है, जो बातें उन 7 गर्जनों ने कही हैं उन्हें मुहर बंद कर दे। ये भावी घटनाओं से संबंधित हैं जो अपने क्रम में प्रकट होंगी। दिनों के अंत में दानियल अपने भाग के लिए खड़ा होगा। यूहन्ना लघु पुस्तक को मुहर खुली हुई देखता है। तब संसार को दिए जाने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों में दानियल की भविष्यवाणियों का उचित स्थान होता है। लघु पुस्तक की मुहर का खुलना समय संबंधी संदेश था।
दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक हैं। एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकटीकरण है। एक मुहर बंद पुस्तक है, दूसरी खुली हुई पुस्तक है। यूहन्ना ने वे भेद सुने जो गर्जनाओं ने उच्चारित किए, परंतु उसे उन्हें न लिखने की आज्ञा दी गई।
यूहन्ना को दी गई विशेष ज्योति जो 7 गर्जनों में व्यक्त की गई थी उन घटनाओं की एक रूपरेखा थी जो प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों के अंतर्गत घटित होने वाली थी। लोगों के लिए इन बातों को जानना उचित नहीं था क्योंकि उनके विश्वास की परीक्षा होना आवश्यक था। परमेश्वर की व्यवस्था में अत्यंत अद्भुत और उन्नत सत्य प्रचारित किए जाने थे। प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रचार किया जाना था, परंतु जब तक ये संदेश अपना विशिष्ट कार्य न कर ले तब तक आगे का कोई प्रकाश प्रकट नहीं किया जाना था। ये उस स्वर्गदूत द्वारा दर्शाया गया है जो एक पांव समुद्र पर रखे खड़ा है और अत्यंत गंभीर शपथ के साथ ये घोषणा करता है कि समय अब और नहीं रहेगा। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री खंड 7 नहेमयाह और नासिट बेसे।
7 गर्जन का अंतिम प्रकाशन 2023 के पश्चात उद्घाटित किया गया और इसने प्रकट किया कि 7 गर्जन प्रथम अल्फा निराशा से लेकर अंतिम ओमेगा निराशा तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूहन्ना को 7 गर्जन को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि 7 गर्जन का प्रकाशन इतिहास की कोई एकमात्र परिपूर्ति नहीं था, वरन घटनाओं की रूपरेखा का एक चित्रण था जो मिलेराइट इतिहास में घटित हुआ था और जो अंतिम दिनों में पुनः घटित होगा। परिपूर्ण परिपूर्ति को 18 जुलाई 2020 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार कानून तक के इतिहास को निरूपित करने के लिए प्रदर्शित किया गया। सिंह ने उस ज्योति को उद्घाटित किया ताकि वो 1,44,000 के मंदिर की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश डाले।
मिलेराइट इतिहास में 7 गर्जनाएं 1796 से 1844 तक की अवधि का प्रतिनिधित्व करती थीं, जब मिलेराइटों ने अत्यंत अद्भुत और उन्नत सत्य प्रस्तुत किए। उन्हें सौंपे गए कार्य का निष्पादन करते समय मिलेराइटों की परीक्षा हुई। वे जिस संदेश का प्रचार कर रहे थे अथवा जिस इतिहास को वे पूरा कर रहे थे उसे वे पूर्णतः नहीं समझते थे। उन्होंने जिन सत्यों का प्रचार किया वे वही थे जिन्हें बहन वाइट उन्नत सत्य के रूप में परिभाषित करती हैं, जिन्हें तब तक समझा नहीं जाना था जब तक प्रथम और द्वितीय मिली स्वर्ग दूतों के संदेश अपना कार्य पूरा न कर लें। जब 7 गर्जन अपनी पूर्ण सिद्धि तक पहुंचते हैं तब वे भविष्य की घटनाएं दानियल की पुस्तक के साथ संयोजन में प्रकाशित अध्याय 14 के 3 स्वर्गदूतों के सन देशों द्वारा निरूपित होती है। 1,44,000 का कार्य जिसका प्रतिनिधित्व 7 गर्जन की भविष्य की घटनाओं द्वारा होता है, दानियल की पुस्तक को 3 स्वर्गदूतों के साथ संयोजित करना है।
प्रभु संसार को उसके अधर्म के कारण दंडित करने ही वाले हैं।
वे धार्मिक संस्थाओं को उन्हें दिए गए प्रकाश और सत्य को अस्वीकार करने के कारण दंडित करने वाले हैं। पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों को मिलाकर जो महान संदेश है उसे संसार को दिया जाना है। यही हमारे कार्य का मुख्य दायित्व होना है। सेवन डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, 9-5 दशमक।
तरवन दिसंबर 2030 से यहूदा के गोत्र का सिंह एक विशिष्ट क्रम में भविष्यवाणी संबंधी सत्यों का उन्मोचन करता आ रहा है।
मिल्रवादी इतिहास।
आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जिन्होंने दानियेल और योहन्ना की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते समय उस परिदृश्य से होकर जाते हुए जहां विशेष भविष्यवाणियां अपने क्रम में पूरी हो रही थीं, परमेश्वर से महान प्रकाश प्राप्त किया। उन्होंने लोगों तक समय का संदेश पहुंचाया। सत्य दोपहर के सूर्य के समान स्पष्ट रूप से चमका। भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्ति दर्शाने वाली ऐतिहासिक घटनाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गईं और ये देखा गया कि भविष्यवाणी उन घटनाओं का रूपकात्मक निरूपण है जो इस पृथ्वी के इतिहास के समापन तक ले जाती हैं। चयनित संदेश पुस्तक 2:101 उस तक 2।
जिस क्रम में मसीह आधी रात की पुकार का संदेश मुहरे खोलते आ रहे हैं वो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं प्रस्तुत करता है जो भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्ति को दर्शाती हैं और जो अनुग्रह काल के समापन की ओर ले जाती हैं। अंतिम दिनों में भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्ति समय आधारित भविष्यवाणियों के किसी नए प्रकटन के रूप में नहीं है, परंतु पलमो नी अभी भी भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्तियों की पहचान करने के लिए संख्याओं का प्रयोग करता है। अब समय नहीं रहा, और यद्यपि मिलरवादियों ने अपनी पीढ़ी के लिए समय का संदेश वहन किया, तीसरे स्वर्गदूत का संदेश समय से भी अधिक प्रबल है।
प्रभु ने मुझे दिखाया है कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश आगे जाना चाहिए और प्रभु की बिखरी हुई संतान को सुनाया जाना चाहिए, और ये कि इसे समय पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समय फिर कभी कसौटी नहीं होगा। मैंने देखा कि कुछ लोग समय का प्रचार करने से उत्पन्न एक भ्रामक उत्साह पा रहे थे कि तीसरे स्वर्गदूत का संदेश समय से भी अधिक शक्तिशाली था। मैंने देखा कि ये संदेश अपने ही आधार पर ठहर सकता है और इसे सुदृढ़ करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, और ये महान सामर्थ्य से आगे बढ़ेगा, अपना कार्य करेगा और धर्म में उसे संक्षेप किया जाएगा। अनुभव और दृष्टिया 48।
भविष्यवाणी संबंधी सत्यों पर लगी मुहरों के खुलने के क्रमबद्ध क्रम से एक प्रगतिशील इतिहास की पहचान होती है, परंतु उससे संदेश के विकास की पहचान भी होती है। निरूपित किए गए इतिहास का वो क्रम और साथ ही 21 दिसंबर से यहूदा के गोत्र का सिंह जिस प्रकार संदेश की मुहरें खोलता आ रहा है, उसके पद चिन्ह, इन दोनों को समझना उद्धारात्मक है। जुलाई 2023 में मरुस्थल में पुकारने वाली एक वाणी ने 21 दिसंबर 2023 को होने वाले मुहर खोलने के लिए मार्ग तैयार करना आरंभ किया। तत्पश्चात यहूदा के गोत्र का सिंह ने प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय की मुहर खोली।
और कुछ नहीं,
प्रकाशित वाक्य में उनके क्रम में दिए गए गंभीर संदेशों को परमेश्वर की प्रजा के मनों में प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए। हमारे ध्यान को किसी अन्य बात द्वारा पूर्णता घेर लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टेस्टिमोनीज खंड 8, 301, 302।
जो लेख 2023 में आरंभ हुए वे परमेश्वर की प्रजा के मनों में प्रथम स्थान ग्रहण करना के लिए है।
भविष्यवाणी के इतिहास में परमेश्वर ने जो कुछ अतीत में पूरा होने के लिए निर्धारित किया था वो पूरा हो चुका है, और जो कुछ आगे अपने क्रम में आना बाकी है वो भी होगा। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता दानियेल अपने स्थान पर खड़ा है, यूहन्ना अपने स्थान पर खड़ा है। प्रकाशित वाक्य में यहूदा के गोत्र के सिंह ने भविष्यवाणी के विद्यार्थियों के लिए दानियेल की पुस्तक खोल दी है, और इस रीति से दानियेल अपने स्थान पर खड़ा है। वो वही साक्ष्य देता है जो प्रभु ने उसे उन महान और गंभीर घटनाओं के दर्शन में प्रकट किया जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ठीक उनकी पूर्ति की दहलीज पर खड़े हैं। इतिहास और भविष्यवाणी में परमेश्वर का वचन सत्य और भ्रांति के बीच दीर्घकाल से चला आ रहा संघर्ष का चित्रण करता है। वो संघर्ष अब भी जारी है। जो कुछ हो चुका है वो फिर दोहराया जाएगा। चयनित संदेश पुस्तक 2:109।
दानियेल 11 कुआफी किस्म के मुहर 1996 में खोली गई और उसे औपचारिक रूप दिया गया। 30 वर्ष बाद उसी पद के गुप्त इतिहास की मुहर अब आधी रात की पुकार के संदेश के औपचारीकरण के संदर्भ में खोली जा रही है। ये ऐसा संदेश है जो इस्लाम के विषय में सुधारी गई बाह्य भविष्यवाणी और आधी रात की पुकार के सुधारे गए आंतरिक संदेश से युक्त है। आधी रात की पुकार का सम पद 16 में उल्लिखित रविवार के कानून से पहले घोषित किया जाता है, क्योंकि दृष्टांत में द्वार का बंद होना रविवार के कानून पर ही होता है।
पतरस
ये पेत्रुस को 144,000 की मुहरबंदी के इतिहास में स्थापित करता है। पेत्रुस के पास एक संदेश था जिसे उसने ऊपरी कोठरी में प्रचारित किया और एक संदेश जिसे उसने मंदिर में प्रचारित किया। ऊपरी कोठरी का संदेश दृष्टांत की आधी रात की पुकार है और मंदिर का संदेश तीसरे स्वर्गदूत की प्रबल पुकार है। मध्यरात्रि की इस पुकार के ऊपरी कोठरी के संदेश का प्रचार पेत्रुस कर सके, इसके लिए उसके संदेश का पहले सुधार कर उसे औपचारिक रूप दिया जाना आवश्यक था। यह सुधार और औपचारिकीकरण उन भविष्यवाणी की रेखाओं को एकत्रित करके संपन्न होता है जिन्हें यहूदा के गोत्र का सिंह 31 दिसंबर 2023 से पहचानता आ रहे हैं।
अब कार्य आधी रात की पुकार के संदेश का औपचारिक प्रतिपादन करना है। इस संदेश के औपचारिक प्रतिपादन को 1831 में विलियम मिलर तथा 1996 में टाइम ऑफ द एंड पत्रिका द्वारा प्रतिरूपित किया गया है, जिस संदेश संशोधन ने 18 जुलाई 2020 को पहली निराशा उत्पन्न की, उसका प्रतिरूप जोसाया लेच और सैमुअल स्नो दोनों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन दोनों द्वारा किया गया कार्य वो कारण था जिसने 11 अगस्त 1840 के पश्चात और 7वें महीने के आंदोलन के पश्चात उत्पन्न हुए प्रभाव को जन्म दिया। 1840 में संदेश विश्व के प्रत्येक मिशन केंद्र तक पहुंचाया गया और 1846 में आधी रात की पुकार का संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र पर ज्वार तरंग के समान छा गया। मनुष्यों का कार्य उस प्रभाव अर्थात पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का कारण बना। 1840 विश्व के लिए था जिसका प्रतीक समुद्र है और 1846 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जिसका प्रतीक पृथ्वी है। 1840 का प्रतीक प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में पृथ्वी और समुद्र पर खड़े मसीह का दर्शन था और यही अध्याय 1840 से 1846 तक के इतिहास की पहचान करता है तथा पृथ्वी और समुद्र पर खड़े मसीह का चित्रण करता है।
1840 और 1844 दोनों में भविष्यवाणी का संशोधन समय में आगे सटीक तिथि की ओर किया गया था। एक इस्लाम के विषय में भविष्यवाणी थी और दूसरी 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में, एक बाह्य था और एक आंतरिक। 1844 में पवित्र स्थान के विषय में गलत समझ के त्रुटि भी सम्मिलित थी। क्या पवित्र स्थान पृथ्वी थी या वो स्वर्गीय पवित्र स्थान था? ये गलत फहमी केवल पवित्र स्थान की परिभाषा भर तक सीमित नहीं थी, क्योंकि ये इस बात की परीक्षा का भी प्रतिनिधित्व करती थी कि कोई आत्मा पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में मसीह का अनुसरण करेगी या नहीं।
मैंने पिता को सिंहासन से उठते हुए देखा और एक ज्वलंत रथ पर आरूढ़ होकर पर्दे के भीतर परम पवित्र स्थान में जाते और बैठते हुए देखा। तब यीशु सिंहासन से उठ खड़े हुए और जो झुके हुए थे उनमें से अधिकांश उनके साथ उठ खड़े हुए। जब वे उठे तब मैंने ये नहीं देखा कि यीशु से उस लापरवाह भीड़ की ओर एक भी प्रकाश रश्मि गई हो और वे पूर्ण अंधकार में छोड़ दिए गए। जो लोग यीशु के उठने पर उठे थे उन्होंने अपनी आँखें उन्हीं पर टिकाए रखीं। जब वो सिंहासन से प्रस्थान कर उन्हें थोड़ी दूर तक बाहर ले गए तब उन्होंने अपना दाहिना भुजा उठाया और हमने उनकी मधुर वाणी सुनी जो कहती थी, यहाँ ठहरो, मैं अपने पिता के पास राज्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। अपने वस्त्रों को कलंक रहित बनाए रखो और थोड़े ही समय में मैं विवाह से लौटकर तुम्हें अपने पास ले लूँगा। तब एक मेघमय रथ जिसके पहिए ज्वलंत अग्नि के समान थे स्वर्गदूतों से घिरा हुआ वहाँ आ पहुँचा जहाँ यीशु थे। वे रथ में चढ़ गए और उन्हें उस परम पवित्र स्थान में ले जाया गया जहाँ पिता विराजमान थे। वहाँ मैंने यीशु को, एक महान महायाजक को, पिता के सम्मुख खड़े देखा। उनके वस्त्र के घेर पर एक घंटी और एक अनार लगे थे।
जो लोग यीशु के साथ उठे थे वे परम पवित्र स्थान में उनके पास अपनी आस्था ऊपर उठाते थे और प्रार्थना करते थे, मेरे पिता हमें अपना आत्मा प्रदान कर। तब यीशु उन पर पवित्र आत्मा फूंकते थे, उस श्वास में प्रकाश, सामर्थ्य और प्रचुर प्रेम, आनंद और शांति थी। मैं उस समूह की ओर देखने को मुड़ा जो अब भी सिंहासन के सम्मुख नतमस्तक थे। उन्हें ये जात न था कि यीशु वहां से प्रस्थान कर चुके थे। शैतान सिंहासन के पास प्रकट होता था, मानो परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हो। मैंने उन्हें सिंहासन की ओर दृष्टि उठाते और ये प्रार्थना करते देखा, हे पिता, हमें अपनी आत्मा प्रदान कीजिए। तब शैतान उन पर एक अपवित्र प्रभाव फूंकता। उसमें ज्योति और प्रचुर सामर्थ्य तो था, परंतु मधुर प्रेम, आनंद और शांति न थी। शैतान का उद्देश्य था उन्हें भ्रमित ही बनाए रखना और पीछे हटाकर परमेश्वर की संतानों को छलना। प्रारंभिक लेखन 55:56।
पवित्र स्थान को उस कुंजी के रूप में पहचाना गया था जो पवित्र स्थान की गलत समझ से उत्पन्न हुई समस्त गलत फहमियों की व्याख्या करती थी। वही कुंजी निराशा की व्याख्या करती थी। अंतकाल में कुंजी निराशा ही है जो मंदिर की गलत समझ की व्याख्या करती है। एक तरीका रचना जुम को समय नहीं रहा और 18 जुलाई 2020 की निराशा से संबंधित त्रुटि का अब सुधार किया जाना चाहिए, परंतु समय के संदर्भ में नहीं, क्योंकि अब समय नहीं रहा।
और वो स्वर्गदूत जिसे मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा देखा, उसने स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाया और उसकी शपथ खाई जो युगानुयुग तक जीवित है, जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, कि अब समय और न रहेगा, परंतु सातवें स्वर्गदूत के स्वर के दिनों में जब वो बजाना आरंभ करेगा तब परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को घोषित किया था। प्रकाशित वाक्य 10:5-7।
जिस भविष्यवाणी में सुधार किया जाना चाहिए उसका स्थान नैशेविल, टेनेसी है, और उस स्थान को बदला नहीं जा सकता क्योंकि उसका निर्धारण फ्यूचर फॉर अमेरिका ने नहीं बल्कि एलन वाइट ने किया है, और भविष्यवाणी की आत्मा कभी असफल नहीं होती।
नैशविल में रहते हुए मैंने लोगों को संबोधित किया था और रात्रिकाल में स्वर्ग से सीधे एक अत्यंत विशाल अग्नि गोलक आया और नैशविल में ठहर गया। उस गोलक से बाणों के समान ज्वालाएं बाहर निकल रही थीं। घर भस्म हो रहे थे, घर डगमगा रहे थे और गिर रहे थे। हमारे कुछ लोग वहां खड़े थे। वे बोले, यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने अपेक्षा की थी। हमने इसकी अपेक्षा की थी। अन्य लोग वेदना में अपने हाथ मरोड़ रहे थे और दया के लिए परमेश्वर को पुकार रहे थे। वे कह रहे थे, तुम इसे जानते थे, तुम जानते थे कि ये आने वाला था, और हमें चेतावनी देने के लिए तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, ये सोचकर कि उन्होंने न तो उन्हें कभी बताया और न ही कोई चेतावनी दी। पांडुलिपि 18:1905।
नैशविल पर पड़े अग्निगोलों का आंतरिक मुद्दा ये है कि ये उद्घाटित करता है कि लाओदिकियन सेवेंथ डे एडवेंटिज्म नैशविल की चेतावनी के संदेश को जानता था किंतु मौन रहा। यह भविष्यवाणी के इतिहास का वो बिंदु है जहां मध्यरात्रि की पुकार के संदेश की लज्जा अथवा आनंद प्रकट होता है। यही वो बिंदु है जब जो ध्वज बनने को है वे ऊपर उठाए जाने लगते हैं और उनके साथ ये भेद स्पष्ट होने लगता है उन लोगों से जो तब संसार के उन लोगों द्वारा लज्जित किए जाते हैं जो इस बात से क्षुब्ध और क्रोधित है कि लाओदिकियन सेवेंथ डे एडवेंटिज्म ने नैशविल के विषय में कोई चेतावनी नहीं दी। यही भविष्यवाणी जन्य भेद कर्मेल पर्वत पर एलिया और बाल के भविष्यद्वक्ताओं के बीच दर्शाया गया था, और मिलराइट इतिहास में दूसरे स्वर्गदूत के काल में भी जब प्रोटेस्टेंट लोग धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट में बदल गए और झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में अपनी भूमिका आरंभ की, रोम की पुत्रियां बनते हुए 1979 में रेगिन के माध्यम से राजनीतिक सिंह ने ठीक यही किया। केवल रेगिन रोम की पुत्रियां नहीं बना, वो अहाब और क्लोविस प्रथम के समान रोम के प्रणयी बन गया।
मेरे सम्मुख एक दृश्य प्रस्तुत किया गया। वो विश्राम दिन से पूर्व की रात थी। उसी समय वो दृश्य मुझे दिखाया गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और स्वर्ग से उतरा हुआ एक अत्यंत विशाल अग्निगोलक था, और वो वहां गिरा जहां वे स्तंभयुक्त भवनों की ढलाई कर रहे थे। विशेषकर वे स्तंभ मेरे सम्मुख प्रस्तुत किए गए, और ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो गोला सीधे उस भवन पर आकर उसे कुचल दिया। और उन्होंने देखा कि वो फैलता जा रहा था और विस्तृत होता जा रहा था, और वे चिल्लाने लगे और विलाप करने लगे और अपने हाथ मरोड़ने लगे। और मुझे प्रतीत हुआ कि हमारे कुछ लोग वहीं पास खड़े थे, कहते हुए, तो ये ठीक वही है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ये वही है जिसके विषय में हम बातें करते रहे हैं, ये वही है जिसके विषय में हम बातें करते रहे हैं। आपको ये जात था, लोगों ने कहा, आपको ये जात था और आपने हमें इसके विषय में कभी बताया नहीं। मुझे प्रतीत हुआ कि उनके मुख पर ऐसी पीड़ा थी, उनके स्वरूप में ऐसी ही पीड़ा। पांडुलिपि जातसों 1504 शासन ईरत
18 जुलाई 2000 ईस्वी की निराशा उस मंदिर की पहचान करने की कुंजी है जिसे पताका के रूप में ऊंचा उठाया जाना है। एडवेंटिस्टों के दो वर्गों का भेद बाइबली भविष्यवाणी का एक प्रमुख विषय है। यिर्मयाह ने ठट्ठा करने वालों की सभा में सम्मिलित होने से इनकार किया, और स्मुर्ना तथा फिलाडेल्फिया की कलीसियाएं दोनों शैतान की सभा के साथ विपरीत ठहराई गईं, जो अपने को यहूदी कहते थे पर थे नहीं। स्वयं को एडवेंटिस्ट कहने वाले इन दो वर्गों के बीच का भेद उस पद्धति से प्रकट होता है जिसका वे बाइबल का अध्ययन करने में उपयोग करते हैं। ये सच्ची शिक्षा और कथित उच्च शिक्षा के बीच का भेद है, जैसा कि सिस्टर व्हाइट इसे कहती है। नैशविल दक्षिण का एथेंस के रूप में जाना जाता है, और नैशविल में ग्रीस का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रसिद्ध इमारत सेंटिनियल पार्क में स्थित पार्थेनॉन है, जिसे 1857 में प्राचीन यूनानी पार्थेनॉन की पूर्णाकार प्रतिकृति के रूप में निर्मित किया गया था। इसे 1755 में टेनेसी की राज्यत्व प्राप्ति की शताब्दी का उत्सव मनाने के लिए बनाया गया था, और उत्सव के पश्चात इसे ध्वस्त कर देने का अभिप्राय था, किंतु 1903 में उस भूमि को एक उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया, और 1920 से 1931 तक पार्थेनॉन का स्थायी रूप से पुनर्निर्माण किया गया। पार्थेनॉन नाम यूनानी शब्द पार्थेनोस से व्युत्पन्न कार्य है, जिसका अर्थ कुमारी अथवा कन्या है। ये एथेना के उस रूप का संकेत करता है जिसमें वे अछूती, प्रज्ञावान और युद्धशील, बुद्धि, रणनीति, कलाओं, शिल्प और सभ्यता की देवी है। ईसा पूर्व 745-744 के बीच एथेंस के अक्रोपोलिस पर इसका निर्माण हुआ। इसमें मूर्तिकार फिडियास द्वारा निर्मित एथेना की एक विशाल क्राइसिलिफांटाइन स्वर्ण और हाथीदाह की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। मूलतः ये उनका गृह या दैवीय निवास था, जहां उनकी उपस्थिति मानी जाती थी। पाश्चात्य शैक्षिक व्यवस्था में व्यापक ज्ञान, आलोचनात्मक विवेचना, नागरिकता हेतु तैयारी और उदार कलाओं के ढांचे पर दिया गया बल मूलतः प्राचीन यूनानी दर्शन और व्यवहार में निहित है। प्लेटो की अकादमी, अरस्तु का लाइसियम अथवा एथेंस की पैदेया के बिना आधुनिक विद्यालयी शिक्षा जैसी हम उसे जानते हैं बहुत भिन्न दिखाई देती। 1904 में नैशविल से नोमियल ड्यूर मैडिसन स्कूल की स्थापना हुई। एलन व्हाइट मूल मैडिसन स्कूल, जो औपचारिक रूप से नैशविल एग्रीकल्चरल एंड नॉर्मल इंस्टीट्यूट कहलाता था, और बाद में मैडिसन कॉलेज के नाम से जाना गया, के निदेशक मंडल की संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने 1904 में इसकी स्थापना के समय से निदेशक मंडल की संस्थापक सदस्य के रूप में सेवा की। वह लगभग 1914 तक निदेशक मंडल में रहीं। 1915 में उनकी मृत्यु से एक वर्ष पूर्व। ये वही एकमात्र महाविद्यालय अथवा संस्थागत बोर्ड था जिसमें सम्मिलित होने या उसमें सेवा करने के लिए उन्होंने कभी सहमति दी थी। अन्य एडवेंटिस्ट संगठनों में ऐसे औपचारिक पदों को उन्होंने जानबूझकर सीमित रखा, परंतु अपने शैक्षिक परामर्शों के अनुरूप होने के कारण उन्होंने मेडिसिन के लिए अपवाद किया। स्वावलंबी, कृषि आधारित, मिशनरी केंद्रित प्रशिक्षण, जो बाइबल, हस्तश्रम और दक्षिण में तथा उससे परे सेवा के लिए व्यावहारिक तैयारी पर बल देता है। सिस्टर व्हाइट के नैशविल संबंधी संदेश 1904 और 1905 में आए, उसी समयावधि में जब मेडिसिन स्कूल प्रारंभ हो रहा था और पार्थेनोन प्रदर्शनी को स्थाई पार्क में एक स्थाई संरचना में परिवर्तित किया जा रहा था। यूनानी शिक्षा का प्रतीक और स्वर्गीय शिक्षा दोनों ने उसी अल्पावधि में अपने आरंभ को चिह्नित किया, जो वही समय था जब नैशविल के अग्निगोलों के दर्शन दिए गए।
गत रात्रि मेरे समक्ष एक दृश्य प्रस्तुत किया गया। मुझे उसका सब कुछ प्रकट करने की स्वतंत्रता संभवतः कभी अनुभव न हो, परंतु मैं उसका थोड़ा सा प्रकट करूंगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक विशाल अग्निपिंड विश्व पर उतर आया हो और बड़े बड़े भवनों को कुचल डाला हो। स्थान स्थान से ये पुकार उठी, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए तैयार न थे, परंतु कुछ कह रहे थे, प्रभु की स्तुति हो। तुम प्रभु की स्तुति क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने प्रश्न किया जिन पर अकस्मात विनाश आ रहा था, क्योंकि अब हम वही देखते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे। यदि तुम विश्वास करते थे कि ये बातें आने वाली हैं, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये भयानक उत्तर था। हमें इन बातों का ज्ञान न था, तुमने हमें अज्ञानता में क्यों छोड़ दिया? बार बार तुमने हमें देखा है, तुम हमसे परिचित क्यों न हुए और आने वाले न्याय के विषय में, और ये कि हम नाश न हों इसलिए गो हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, ये हमें क्यों न बताया? अब हम नाश हो गए हैं। पांडुलिपि 290-1904।
नैशविल के संदेशों का संदर्भ भौगोलिक स्तर पर सत्य अथवा असत्य शिक्षा के आध्यात्मिक परिवेश में रखा गया था। वो ऐसी शिक्षा थी जो किसी आत्मा को या तो स्वर्ग का अथवा पृथ्वी का नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। सिस्टर व्हाइट के नैशविल संबंधी दर्शनों में इस्लाम का कोई उल्लेख नहीं है, तो नैशविल पर अग्निगोलों के दर्शन के साथ इस्लाम को जोड़ने का औचित्य क्या होगा? 2020 के नैशविल संदेश में किए गए संशोधन का जोसाया लिच और सैमुअल स्नू के कार्य के साथ किस प्रकार सामंजस्य होगा? उनके संशोधन तब किए गए जब उन्होंने ये पहचाना कि वही प्रमाण जिसने पहली भविष्यवाणी तक पहुंचाया था, वही प्रमाण था जिसने संशोधित भविष्यवाणी को स्थापित किया। नैशविल के चेतावनी संदेश से संबद्ध किए जाने से बहुत पहले ही इस्लाम का साक्ष्य स्थापित किया जा चुका था। इस्लाम का संदेश तीसरे स्वर्गदूत के संदेश से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। इस तथ्य का प्रतिपादन अनेक बाइबेलीय साक्ष्य करते हैं। तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी उत्तर के राजा के अधिकार के चिन्ह के विषय में दी गई चेतावनी का प्रतिनिधित्व करती है, और इस्लाम की चेतावनी का प्रतिनिधित्व पूर्व के पुत्रों की चेतावनी द्वारा होता है।
परंतु पूरब और उत्तर से आने वाली खबरें उसे व्याकुल करेंगी, इसलिए वो बड़े क्रोध से निकल पड़ेगा विनाश करने और बहुतों का सर्वनाश कर देने के लिए। दानियल 11:11-84।
टुनेफाल टुनेफेरोवर को जब सातवीं तुरही बजने लगी, तीसरा स्वर्गदूत इतिहास में प्रवेश किया। सातवीं तुरही इस्लाम का तीसरा हाई भी है। 3730 के विद्रोह ने सातवीं तुरही के निनाद को 9:11 तक मौन कर दिया, जब प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में तीसरा स्वर्गदूत उतरा और न्यूयॉर्क की विशाल इमारतें परमेश्वर की सामर्थ्य के एक स्पर्श से गिरा दी गईं। 900 तारीख के काल का अल्फा अर्थात आरंभ था, जो शीघ्र आगामी रविवार धर्म विधान के समय 1,44,000 के मुद्रांकन के ओमेगा अर्थात समापन पर समाप्त होगा। 9057 संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल का अल्फा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु का चिन्ह बलपूर्वक लागू किए जाने पर अपने ओमेगा पर समाप्त होता है। 9/11 पृथ्वी के पशु मैग्नचियर, उसके रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट सिंगो सहित जीवितों के न्याय का अल्फा अथवा आरंभ है, जो शीघ्र आगामी रविवार विधान पर समाप्त होता है। न्यूआलम प्रभु की तैयारी के दिन का अल्फा है, जो प्रभु के विश्राम दिन के विषय में होने वाली परीक्षा पर समाप्त होता है। 9/17 सुर मंदिर निर्माण का अल्फा है, जिसका प्रतीक आधारशिला है, और वो तब समाप्त होता है जब ओमेगा शीर्ष शिला मंदिर पर स्थापित की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 अगस्त तीसरे हाई का अल्फा है, जो प्रकाशित वाक्य एलर के उस भूकंप पर समाप्त होता है। जो कि शीघ्र आगामी रविवार का कानून है। उसी भूकंप पर तीसरा हाय शीघ्र आता है। नैशविल के अग्निगोलों का इतिहास रविवार के कानून पर अनुग्रह काल के समाप्त होने से पहले का है। उन लोगों की घोषणा के बावजूद जो लाओदिकियाई एडवेंटिस्टों को दोषी ठहराते हुए कहते हैं, अब हम नाश हो गए हैं। योएल की पुस्तक और उसका पिंतेकुस्त पर परिपूर्ण होना मध्यरात्रि की पुकार के संदेश के विषय में उठने वाले उस विवाद को प्रस्तुत करते हैं, जब एक वर्ग जो ज्ञान की वृद्धि को समझ नहीं पाता, समझ रखने वालों पर मतवाले होने का आरोप लगाता है। इफ्रैम के मतवालों और बुद्धिमानों का आमना सामना परमेश्वर के भविष्यद्वाणी के वचन में बार बार संबोधित किया गया विषय है। सत्य का एक तत्व ये है कि ये संदेश दो चरणीय है, जैसा कि पत्रस ने ऊपरी कोठरी में और तत्पश्चात मंदिर में दर्शाया। ये उस न्याय द्वारा भी निरूपित होता है जो परमेश्वर के घर से आरंभ होकर फिर उसके घर से बाहर वालों पर होता है। न्याय की ये प्रक्रिया प्रकाशित वाक्य 18 के दो स्वरों द्वारा भी प्रदर्शित होती है, जहां पहला स्वर 9:11 से लेकर रविवार कानून तक रहता है और फिर चौथे पद का दूसरा स्वर रविवार कानून को चिह्नित करता है। अंतिम वर्षा के सच्चे और मिथ्या भविष्यद्वाणी पंफा संदेश का भेद भी एलिया द्वारा चित्रित है, जिसे मलाकी अनुग्रह काल के बंद होने से ठीक पहले लौटने वाला ठहराता है। कर्मेल पर्वत पर बुद्धिमानों और मूर्खों के प्रति बुद्धिमान एलिया और बाल के मूर्ख भविष्यद्वक्ता थे। एलिया पतरस है और बाल के भविष्यद्वक्ता इफ्राम के मद्यपी हैं। जब अग्नि के उतरने के द्वारा वे मूर्ख मद्यपी बाल के झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रकट कर दिए जाते हैं, तब लोग अंततः यह उत्तर देते हैं, यहोवा वाह ही परमेश्वर है। नैशविल की भविष्यवाणी की पूर्ति पर लाओदिकियाई सातवें दिन के एडवेंटिस्ट इसी प्रकार प्रकट किए जाते हैं। तब एडवेंटिज्म के बाहर के वे लोग जो मूर्खों की अविश्वस्तता के प्रति जागृत किए जाते हैं, दृढ़ प्रत्यय में लाए जाते हैं, परंतु उनका अनुग्रह काल अभी बंद नहीं हुआ है। नैशविल के चेतावनी संदेश द्वारा निरूपित बुद्धिमान और मूर्ख कुमारियों के प्रकटीकरण का ये चित्रण 10 कुमारियों के दृष्टांत की अंतिम और सिद्ध पूर्ति में एक मार्ग चिन्ह है। 8 जुलाई 2020 की निराशा उस संदेश को परिभाषित करती है जिससे सुधारा जाना चाहिए, और एडवेंटिज्म के भीतर जिनके पास तेल है और जिनके पास नहीं, उनका प्रकटीकरण करती है। नैशविल को चेतावनी देने वाले तेल के संदेश से वंचित लोगों की तब उन लोगों से तुलना की जाती है जिनके पास तेल है, उन दो वर्गों में से जो या तो संदेश का तेल रखते हैं या नहीं रखते। एक वर्ग ने ऐसी निराशा का अनुभव किया है जिसका प्रतिनिधित्व मिलरवादी इतिहास की पहली निराशा द्वारा किया गया था, दूसरे के पास वो अनुभव नहीं है। मिलरवादियों द्वारा प्रतिरूपित उस निराशा के बिना किसी भी विफल भविष्यवाणी में किए जाने योग्य कोई सुधार ठहरता नहीं। ये तथ्य कि 2020 की नैशविल की भविष्यवाणी इस्लाम की पहचान कर रही थी, एक असफल संदेश के उस तत्व के अनुरूप है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। इसका एक प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि वो इतिहास जिसमें नैशविल की अग्निगोलाएं प्रकट होती है, न केवल मिलरवादियों की प्रथम निराशा के इतिहास और तत्पश्चात संदेश के संशोधन से सामंजस्य रखता है, अपितु इसलिए भी कि वो ऐसे इतिहास के भीतर घटित होता है जिसकी शुरुआत 9:11 को तीसरे स्वर्गदूत के आगमन से होती है, जो तीसरी हाय के इस्लाम के आगमन को चिह्नित करता है, और ये कि इस्लाम भविष्यवाणी की दृष्टि से प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के रविवार विधान के भूकंप के समय पुनः आता है। सिस्टर व्हाइट द्वारा इस्लाम और नैशविल की चेतावनी का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख न होने पर भी संदेश में इस्लाम को बनाए रखना, इस कारण है कि उस इतिहास का विषय स्वयं इस्लाम है। दानियल की पुस्तक शीर्षक वाली श्रृंखला के 153वें लेख में हमने पहचाना कि बिलाम और गधी की गवाही के अनुरूप गधी द्वारा निरूपित इस्लाम का 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तीन प्रमुख परस्पर क्रियाओं का संबंध होगा। हमने 9:11 को प्रथम और फिर 7 अक्टूबर 2022 को द्वितीय के रूप में पहचाना। हमने ध्यान दिया कि पहला आक्रमण आध्यात्मिक महिमामय भूमि पर था और दूसरा आक्रमण इसराइल की शाब्दिक महिमामय भूमि पर था तथा तीसरा आक्रमण रविवार के कानून के भूकंप के समय होने वाला आक्रमण होगा। हमने इंगित किया कि इस भविष्य सूक सत्र पर बिलाम का इतिहास सत्यथ की छाप लिए हुए था, क्योंकि पहला और अंतिम दोनों आक्रमण आध्यात्मिक महिमामय भूमि पर थे और मध्य का आक्रमण शाब्दिक महिमामय भूमि पर, जो विद्रोह का प्रतीक है। अब हम देखते हैं कि एक चौथा प्रहार, जो मध्य रात्रि की पुकार के संदेश का आरंभ चिन्हित करेगा, तब आध्यात्मिक महिमामय भूमि में घटित होगा जब नैशविल के अग्निगोले पूरित होंगे। इसका अर्थ ये है कि बिलाम और उसकी गधी का दूसरा प्रहार दुगना है उन दो प्रहारों में, पहला शाब्दिक महिमामय भूमि पर और दूसरा आध्यात्मिक महिमामय भूमि पर है। उस लेख ने एक अपूर्ण सत्य प्रस्तुत किया था, जिसे अब यहूदा के गोत्र का सिंह ने नैशविल के अग्निगोलों के साथ इस्लाम के भविष्यवाणीगत संबंध के एक अन्य साक्ष्य के रूप में प्रकट कर दिया है। नैशविल के अग्निगोलों के साथ इस्लाम की संबद्धता का समर्थन करने वाला एक अन्य तर्क पवित्र इतिहास की सुधार रेखाओं के भीतर पाया जाता है। प्रत्येक सुधार आंदोलन का अपना एक विशिष्ट विषय होता है, जो समस्त सुधार आंदोलन में व्याप्त रहता है। मूसा के सुधार आंदोलन में विषय एक चुने हुए लोगों के साथ वाचा में प्रवेश करना था। मसीह की सुधार रेखा में यह मसीह के विषय में था। दाऊद की सुधार रेखा में यह 10 आज्ञाओं और पवित्र स्थान के विषय में था। मिलेराइटों में प्रतिपाद्य भविष्यवाणी का समय था, क्योंकि मिलेराइटों ने समय का संदेश उठाया था। 9:11 पर तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ 144,000 की सुधार रेखा के लिए विषय की पहचान इस प्रकार हुई। तीसरी हाई का इस्लाम, पूर्व के पुत्र, बाइबलीय भविष्यवाणी का गदा, प्रकाशित वाक्य 9 के युद्ध घोड़े, पूर्वी पवन, टिड्डियां और जातियों का क्रोधित होना, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का भूकंप तीसरी हाय के रूप में इस्लाम को चिह्नित करता है और साथ ही आधी रात की पुकार के संदेश के समापन का भी निरूपण करता है। आधी रात की पुकार का प्रतिरूप मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश था, जो गधे के बंधन खोले जाने से आरंभ हुआ। मिलराइट इतिहास में आधी रात की पुकार का आरंभ एग्जेटर की कैंप मीटिंग में सैमुअल स्नो का घोड़े पर सवार होकर पहुंचना था। आधी रात की पुकार की अवधि का आरंभ इस्लाम के प्रतीकों से चिह्नित होता है। अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि 18 जुलाई 2020 का संशोधित संदेश चेतावनी के संदेश के एक अंग के रूप में इस्लाम को सम्मिलित करता है। कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई है, परंतु नैशविल के आग के गोले अंतिम दिनों में नए दाखरस के विवाद को चिह्नित करते हैं। अतः नैशविल के आग के गोले इस्लाम को भी समाहित करते हैं, परंतु आग के गोलों को परमाणु हथियारों के रूप में पहचाने जाने के विषय में क्या? संदेश को अनेक साक्षियों के आधार पर हमले में प्रतिपक्षी के रूप में इस्लाम का निर्धारण यथावत बनाए रखना चाहिए। समय निर्धारण का वो दोष जिसे सुधारा जाना है 1840 और 1844 दोनों द्वारा प्रतिरूपित है। अब समय को भविष्य सूचक संदेश का अंग नहीं होना है, यद्यपि संख्याएं अब भी उसका भाग है। पवित्र स्थान संबंधी गलतफहमी द्वारा निरूपित त्रुटि का भी समाधान होना चाहिए, परंतु उसके समाधान और उसे सुधारे हुए संदेश में समाहित करने से पहले उस त्रुटि की पहचान की जानी चाहिए जिसका प्रतिरूप वही पवित्र स्थान संबंधी गलतफहमी थी। 18 जुलाई की नैशविल चेतावनी में उस पवित्र स्थान संबंधी गलतफहमी ने क्या प्रतिनिधित्व किया था? मैं ये प्रतिपादित करता हूँ कि उत्तर उस ज्योति में मिलते हैं जो 2023 के अंत से लगातार उद्घाटित होती चली आ रही है। उत्पत्ति, मत्ती और प्रकाशित वाक्य में अध्याय 11 से आरंभ होकर अध्याय 22 पर समाप्त होने वाले 11 अध्यायों के 3 समानांतर खंड 144,000 के साथ परमेश्वर की वाचा का नवीनीकरण है। क्या हम ऐसा आचरण कर मानो हमने उसकी बुलाहट सुनी ही ना उसकी दया के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, या अपनी मानवीय शक्ति के भरोसे नतमस्तक होकर ये घोषित करते हैं, जो कुछ वो आज्ञा देता है मैं करूंगा? या हम पवित्र आत्मा को उसकी व्यवस्था हमारे हृदय और मन पर लिखने देते हैं। उत्तर दानियेल के 12वें अध्याय में उन 3 वचनों की मुहर के खुलने में भी पाए जाते हैं, जो समय को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों को संदेशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे 3 वचन वचन 7 में, 31 दिसंबर 2023 को, वचन 12 में, 18 जुलाई 2020 को भी चिह्नित करते हैं, और वचन 11 में 1999 से रविवार विधान तक तथा आगे अनुग्रह काल के समापन तक का प्रतिनिधित्व किया गया है। उन्हीं 3 वचनों में निहित वे 3 सत्य ठीक उसी शास्त्र अंश में स्थित हैं, जहां वो त्रिविध परख प्रक्रिया प्रतिपादित है, जो हर बार किसी भविष्यवाणी की मुहर खुलने पर घटित होती है। मसीह ने केवल दानियेल अध्याय 12 की त्रिगु मेहर ही नहीं खोली, बल्कि उन्होंने उन परीक्षाओं को इस प्रकार निरूपित किया। पहली आधारभूत परीक्षा, उसके पश्चात मंदिर परीक्षा और उसके पश्चात लिटमस परीक्षा। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि आधारभूत परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को आरंभ हुई और वो मिलेराइट आंदोलन की आधारभूत परीक्षा पर आधारित थी, जिसका निरूपण इस तथ्य से होता है कि विरोधी मसीह वो प्रतीक है कि जो बाह्य दर्शन की स्थापना करता है। तत्पश्चात उसने दूसरी अर्थात मंदिर परीक्षा की शुरुआत इस रूप में की कि उसका निरूपण अध्याय 10 में मंदिर में मसीह के दानियेल के दर्शन द्वारा होता है। वो परीक्षा वर्तमान में प्रगति पर है। दानियेल अध्याय 12 की मुहर का खुलना 1997, 18 जुलाई 2020, 31 दिसंबर 2023 की तिथियां और रविवार के विधान रोम के दर्शन और मसीह के दर्शन को सम्मिलित करता है। दोनों दर्शन ठीक उसी एक दर्शन में प्रतिपादित हैं, जिसमें अध्याय 12 की मुहर का खुलना पाया जाता है। ये 3 अध्याय एक ही दर्शन हैं, और अध्याय 12 की दर्शन मंदिर परीक्षा है, अध्याय 11 में विरोधी मसीह का दर्शन आधार परीक्षा है, और अध्याय 12 में 144,000 के मार्ग चिन्ह तीसरी अर्थात लिटमस परीक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां बहुत से शुद्ध किए जाते, धवल किए जाते और परखे जाते हैं, और मूर्खों को बुद्धिमानों से पृथक किया जाता है। मंदिर की परीक्षा ने लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 के प्रकाश का उद्घाटन किया, जो वाचा के संदूक का प्रकाश था और जो 7वें दिन के सप्त का अल्फा प्रकाश तथा 7वें वर्ष के सप्त का ओमेगा प्रकाश है। अल्फा और ओमेगा सप्तों का ये प्रकाश देहधारण के प्रकाश की पहचान कराता है। वो प्रकाश ये निर्दिष्ट करता है कि परमेश्वर ने दिव्यता और मानवता के संयोजन की निपट स्थापना के उद्देश्य से मनुष्य का शरीर धारण किया। यही वो कार्य है जिसे मसीह ने 22 अक्टूबर 1844 को आरंभ किया, और इसी कार्य को वो अब जीवितों के न्याय में पूर्ण कर रहा है। लव्य व्यवस्था 23 के प्रकाश ने वसंत ऋतु के अल्फा पर्वों को शरद ऋतु के ओमेगा पर्वों के साथ जोड़कर 31 दिसंबर 2023 से लेकर मानव परीक्षा काल की समाप्ति तक का वही इतिहास प्रकट किया। उस रेखा में आधारभूत परीक्षा का आगमन 31 दिसंबर 2023 को चिह्नित है, और मंदिर परीक्षा 2025 में आरंभ होती हुई पहचानी गई है, जो तुरहियों के पर्व की कसौटी तक चलती है। जुलाई 2023 में आरंभ हुई जंगल में पुकारने वाले स्वर को उस 3 भागों के मार्ग चिन्ह के 5 दिन बाद समाप्त हुए खमीर रहित रोटियों के पर्व द्वारा चिह्नित किया गया है। तत्पश्चात 30 दिनों की एक अवधि आई, जिसके बाद 3 भागों का मार्ग चिन्ह आया, जिसके बाद 5 दिन हुए। इस प्रकार ये अनंत सुसमाचार के 3 चरणों का निरूपण करता है। अल्फा के 3 भागों का मार्ग चिन्ह, जिसके बाद 5 दिन आते हैं। पहला स्वर्गदूत ठहरता है, 30 दिनों की अवधि दूसरा स्वर्गदूत ठहरती है, और ओमेगा के 3 भागों का मार्ग चिन्ह, जिसके बाद 5 दिन आते हैं, जो पिंतेको पर होने वाले रविवार के कानून तक ले जाते हैं, तीसरा स्वर्गदूत ठहरता है। मसीह ने मंदिर के परीक्षण काल में वाचा के संदूक के निर्माण के संदर्भ में लेव्य व्यवस्था 23 के प्रकाश को भी उद्घाटित किया। वाचा के संदूक के एक ओर 7वें दिन के सप्त का संदेश अथवा स्वर्गदूत, और दूसरी ओर 7वें वर्ष के सप्त का स्वर्गदूत उन आवरण करने वाले करूबों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संदूक में झांकते हैं। 144,000 के मुद्रांकन के इतिहास में उन दो स्वर्गदूतों का द्विग्न प्रकाश सातवें दिन के सप्त और अवतार के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा विषय जिसका अध्ययन अनंत काल तक किया जाएगा। निस्संदेह यदि आप सात समय को योबेल 1863 की आध्यात्मिक दास मुक्ति उद्घोषणा का प्रतीक नहीं देख पाते तो आप ये नहीं देखेंगे कि विलियम मिलर की अल्फा और ओमेगा भविष्यवाणियां सात समय और 2300 दिन थी। उन दो परसर पर संबंधित समय भविष्यवाणियों के महत्व को न देख पाना इस बात की किसी भी पहचान को रोक देता है कि 1798 सात समय का प्रतिनिधित्व करता है और 1844 2300 दिनों का। ऐसे अभाव ज्ञान के साथ ये देख पाना लगभग असंभव होगा कि जब लव्य व्यवस्था अध्याय 23 को माँ के पर रेखा रखते हुए जोड़ा जाता है, उसके आरंभिक 22 पद जो वसंतकालीन पर्वों का प्रतिपादन करते हैं को शरतकालीन पर्वों के अंतिम 22 पदों के साथ रखकर, तो वो रेखा 1844 द्वारा निरूपित सातवें दिन के सप्त से आरंभ होती है और 44 पदों की उस रेखा का जो सप्त अंत करता है वो 1798 द्वारा निरूपित भूमि का सप्त है। दो सप्तों के परस्पर संबंध को न देख पाना इस असमर्थता का प्रतिनिधित्व करता है कि इस 1798 के साथ काल मानवता है और 1844 के 2300 दिन दैवत्व है। इतनी गहरी अंतता के साथ ये लगभग असंभव प्रतीत होता है ये पहचानना कि सातवें दिन के सप्त का अल्फा प्रकाश और अवतार के सिद्धांत का ओमेगा प्रकाश मसीह के उस कार्य को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें वे अपने दैवत्व को पतनशील मनुष्य की मानवता के साथ संयोजित करते हैं। हमारी मानवता के साथ अपने दैवत्व को संयोजित करने में मसीह का कार्य इस 1798 को 1844 के साथ संयोजित करने का ही कार्य है, क्योंकि 1798 मानव देह का प्रतिनिधित्व करता है और 1844 दैवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप में सृजित की गई जिसमें उच्च और निम्न दोनों प्रकृतियां निहित हैं। मनुष्य की उच्च प्रकृति शारीरिक और पाप के अधीन बिकी हुई है। मसीह परिवर्तन के क्षण में परिवर्तित आत्मा को अपनी बुद्धि प्रदान करता है, क्योंकि परिवर्तन वही अवस्था है जहां धर्मी ठहराया जाना संपन्न होता है, और धर्मी ठहराया जाना धर्मी बनाया जाना ही है। निम्न प्रकृति का उद्धार तत्क्षण में ही हो सकता, और निम्न प्रकृति के विषय में सुसमाचार की प्रतिज्ञा ये है कि मसीह के पुनरागमन पर हमें महिमामय देह प्राप्त होगी। उच्च प्रकृति मन है और निम्न प्रकृति देह है। उच्च प्रकृति सात समय की वो भविष्यवाणी है जो 22 अक्टूबर 1844 को प्रायश्चित के दिन समाप्त हुई, जब सातवीं तुरही और योबेल की भावी तुरही दोनों बजने लगीं। निम्न प्रकृति के सात समय 1798 में समाप्त हुए, क्योंकि उसका नवीनीकरण मसीह के द्वितीय आगमन तक नहीं हो सकता। 1799 सात काल, 1844 के सात काल और 1844 के 2300 वर्ष मसीह के उस कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 22 अक्टूबर 1844 को आरंभ हुआ। वो कार्य उसके देवत्व को मानवता के साथ संयुक्त करना था, परंतु जब 1844 में मानवता और देवत्व से निर्मित मंदिर का एकीकरण होना था तब 1799 को सम्मिलित नहीं किया जाना था, क्योंकि वो अन्य जातियों के प्रांगण का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की परीक्षा में मंदिर को नापना सम्मिलित है, और 2023 में आरंभ हुए अमोहरण के इतिहास के प्रारंभ में ही सात गर्जनाओं के अमोहरण ने प्रथम निराशा से लेकर महान निराशा तक के इतिहास को सात गर्जनाओं द्वारा निरूपित इतिहास की अंतिम और परिपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना, जिनके विषय में प्रेरणा कहती है कि वे प्रथम और द्वितीय स्वर्ग दूतों के इतिहास के दौरान घटी घटनाओं का तथा उन भावी घटनाओं का भी जो अपने क्रम में प्रकट की जाएंगी प्रतिनिधित्व करती हैं, उस परिपूर्ण पूर्ति को सत्य की उस रूपरेखा के भीतर स्थापित किया गया जो 2023 में आई प्रथम प्रकाशनाओं में से एक थी। आरंभ में जो निराशा थी वो ओमेगा निराशा का प्रतिनिधित्व करती थी, और मध्य में एक्सेटर कैंप मीटिंग थी जहां संदेश के तेल के आधार पर बुद्धिमानों और मूर्खों का पृथक्करण हुआ। मिलरवादियों का मंदिर निराशा से निराशा तक खड़ा किया गया था, और इस प्रकार ये दर्शाता है कि 1,44,000 का मंदिर 18 जुलाई 2020 से लेकर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून तक स्थापित किया जाता है, जहां दृष्टांत में द्वार बंद हो जाता है, जैसा कि 22 अक्टूबर 1844 को हुआ था। सात गर्जनों द्वारा निरूपित इतिहास वही इतिहास है जो दानियेल 12 के प्रकाश में निरूपित है। दानियेल 12 के 1290 दिनों का प्रकाश सीधे उस 30 वर्षीय काल से जुड़ता है जो पद 11 में निरूपित है। ये उन 30 वर्षों से भी संबद्ध है जिन्हें छूनी हुई प्रजा के साथ की गई वाचा के प्रथम प्रतिनिधि तथा उस भविष्यद्वक्ता द्वारा जिसे शाब्दिक इज़राइल से आध्यात्मिक इज़राइल के वाचा संबंध में परिवर्तन की पहचान कराने के लिए उठाया गया था, विशेष रूप से चिह्नित किया गया है। लेव्य व्यवस्था 23 की रूपरेखा के मध्य के 30 दिन वही 30 वर्ष हैं जो परमेश्वर के साथ अब्राहम की त्रिभागी वाचा के प्रथम चरण के हैं। पद 11 में 500 बाद से 528 तक के 30 वर्ष 1,44,000 की याजकता का प्रतीक है। लव्य व्यवस्था अध्याय 23 की संरचना में निहित 30 दिन 39 दिनों का भाग हैं जिनमें मसीह ने अपने शिष्यों को आमने सामने शिक्षा दी जब तक वे स्वर्गारोहित न हुए। 30 की संख्या उन याजकों का प्रतीक है जो 30 वर्ष की आयु में सेवा आरंभ करते थे। 508 से 538 तक के 30 वर्ष मूर्ति पूजक रोम से पोपतंत्रीय रोम की ओर होने वाले संक्रमण की पहचान कराते हैं, और ऐसा करते हुए वे 1,44,000 के लाओदीकियाई याजकत्व से 1,44,000 के फिलाडेल्फियाई याजकत्व की ओर होने वाले संक्रमण की भी पहचान कराते हैं। ये संक्रमण 3 चरणों में घटित होता है। 508 में जब दैनिक हटा दिया गया, 532 में जस्टिनियन का अध्यादेश, और उसके पश्चात 538 का रविवार का कानून, जिनके साथ ये संक्रमण अंतिम रूप से संपन्न हुआ। वे 30 वर्ष 1989 से लेकर रविवार के कानून तक की अवधि का द्योतक है, जिस समय परमेश्वर के मोहरित फिलाडेल्फियाई लोग उसके मंदिर के रूप में समस्त संसार के देखने के लिए ऊंचा उठाए जाएंगे। तब संसार ये निर्णय करेगा कि वो किसके साथ ठहरे, मसीह के साथ जिसका प्रतिनिधित्व उसकी प्रजा करती है जो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है और इस कारण परमेश्वर के मंदिर में है, या अधर्म के मनुष्य के साथ जो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय 11वें घंटे के मजदूर, जो कि वही महान भीड़ भी हैं, एक मूलभूत परीक्षा का सामना करेंगे। क्या 7वें दिन का सप्त परमेश्वर का सप्त है, या सूर्य का दिन परमेश्वर का सप्त है?
और अब उसके सामने एक और दृश्य गुजरा। उसे ये दिखाया गया था कि किस प्रकार शैतान ने यहूदियों को मसीह को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जबकि वे उसके पिता की व्यवस्था का आदर करने का दावा करते थे। अब उसने देखा कि मसीही जगत भी इसी प्रकार के छल के अधीन है। वे मसीह को स्वीकार करने का दावा करते हैं, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराते हैं। उसने याजकों और पुरनियों से वो उन्मत्त पुकार सुनी थी, उसे दूर कर दो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। और अब उसने कथित मसीही शिक्षकों से ये पुकार सुनी, व्यवस्था को दूर करो। उसने देखा कि विश्राम दिन पैरों तले रौंदा जा रहा है, और उसके स्थान पर एक मिथ्या संस्था स्थापित कर दी गई है। फिर से मूसा विस्मय और आतंक से भर गया। जो मसीह में विश्वास करते हैं, वे पवित्र पर्वत पर स्वयं उसके मुख की वाणी से बोली गई व्यवस्था को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? जो कोई परमेश्वर का भय मानता है, वो उस व्यवस्था को, जो स्वर्ग और पृथ्वी में उसके शासन की नींव है, कैसे एक ओर रख सकता है? आनंद के साथ मूसा ने देखा कि अब भी कुछ विश्वास योग्य जन परमेश्वर की व्यवस्था का आदर करते और उसे महान ठहराते हैं। उसने पृथ्वी की शक्तियों के उस अंतिम महान संघर्ष को देखा जिसमें वे परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वालों का नाश करने पर तुले हैं। उसने उस काल की ओर दृष्टि की जब परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों को उनकी अधर्मता के कारण दंड देने के लिए उठेगा और जिन्होंने उसके नाम का भय माना है वे उसके क्रोध के दिन ठके और छिपाए जाएंगे। उसने सुना कि परमेश्वर अपनी पवित्र निवास स्थली से अपनी वाणी उच्चारित करता है, तब आकाश और पृथ्वी कांप उठते हैं और वो अपनी व्यवस्था को रखने वालों के साथ शांति की वाचा बांधता है। उसने महिमा सहित मसीह के दूसरे आगमन को देखा, धर्मी मृतकों को अमर जीवन के लिए जिलाया जाना और जीवित पवित्र जनों को मृत्यु देखे बिना रूपांतरित किया जाना, और सब मिलकर हर्ष के गीतों के साथ परमेश्वर के नगर की ओर ऊपर उठ गए। पितृपुरुष और भविष्यद्वक्ता 468।
वो महान जन समूह जो अन्य जातियों और एक घड़ी के मजदूरों से बना है, नींव की एक परीक्षा से परखा जाता है, जिसके तुरंत बाद मंदिर की परीक्षा आती है। क्या रोम का मानवीय मंदिर, जिसमें पाप का मनुष्य है, वो चट्टान होगा या रेत जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रखोगे, या फिर अवतार का वो मंदिर, दिव्यता और मनुष्यता का संयोजन, 144,000 का वो मंदिर है जिसे पतरस आध्यात्मिक भवन कहता है। नींव और मंदिर की उस परीक्षा काल में उत्पीड़न तीसरे चरण के लिटमस परीक्षण को सिद्ध करेगा और तब मानवीय परख काल समाप्त हो जाएगा।
यहूदा के गोत्र का सिन अब पद 40 के छिपे हुए इतिहास की रिक्तियों को भर रहा है और क्रूश, नीरो और ट्रंप की 250 वर्षीय तीन भविष्यवाणियों के द्वारा और भी अधिक प्रकाश प्रस्तुत किया है। और उसने ये ठीक उसी समय किया जब उसने नैशविल के संशोधित संदेश के प्रचार कार्य पर बल दिया था। नीरो की रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका में और तत्पश्चात संसार में पशु की प्रतिमा की अंतिम स्थापना के ढांचे को प्रदान करती है। 440 ईसा पूर्व की क्रूश की रेखा राफिया और पैनियम के मध्य के इतिहास को निर्दिष्ट करती है। यूक्रेनी युद्ध और उस तृतीय विश्वयुद्ध के बीच के इतिहास को, जो आसन रविवार कानून के समय पैनियम के एक्टियम के साथ संयुक्त होने पर आरंभ होता है। ट्रंप की रेखा इस वर्ष 4 जुलाई को समाप्त होती है।
नेरो उत्पीड़न का प्रतीक है। स्मिर्ना की कलीसिया उस इतिहास को चिन्हित करती है जो परगामस की कलीसिया और समझौते के समय 250 वर्ष पश्चात उत्पीड़न के समाप्त होने तक बना रहता है। ये काल रेखा छवि की स्थापना को चिन्हित करती है और इस प्रकार उस इतिहास के साथ संरेखित होती है जब उसके मंदिर में मसीह की छवि स्थापित की जा रही होती है। राजा वह आरंभ बिंदु है जो प्रथम रविवार के कानून तक ले जाता है, जिसके बाद पूर्व और पश्चिम, बुद्धिमान और मूर्ख, गेहूं और खरपतवार तथा उद्धार पाए हुए और नाश होने वालों के बीच विभाजन का बंद द्वार आता है। जो राजा उस अवधि का आरंभ करती है, वही राजा संसार के लिए भी उसी परीक्षण काल का आरंभ करती है। अतः राजा उस अवधि के समय का नाथ संसार की भी प्रथम भी है और अंतिम भी। नेरो की 17 वर्षीय काल रेखा का प्रत्येक मार्ग चिन्ह उस रविवार के कानून के संकट के तीव्र होते उत्पीड़न को चिन्हित करता है जो एक राजाज्ञा से आरंभ होता है, कुछ उसी श्रेणी का जैसा किसी राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश।
457 के क्रूस के तीन फरमान एक 17 वर्षीय काल की पहचान कराते हैं जिसके अंत में तीन मार्ग चिन्ह हैं। ठीक इसी प्रकार नीरो की रेखा तथा क्रूश की दूसरी रेखा भी, जो 1798 से 1824 तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के आगमन के साथ समाप्त हुई। क्रूश के तीन चरण हैं, राफिया का युद्ध, फिर 10 वर्षों के बाद दूसरा चरण और उसके 7 वर्ष बाद पैनियम का युद्ध। आरंभ और अंत दोनों युद्ध होने के कारण वे अल्फा और ओमेगा की छाप लिए हुए हैं। प्रथम 10 वर्षीय काल एक परीक्षण काल का प्रतिनिधित्व करता है जो 2014 में यूक्रेनी युद्ध से आरंभ हुआ और दूसरा काल 7 वर्ष पश्चात पैनियम के युद्ध पर समाप्त होता है।
पल्मोनी ने पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के इतिहास के मिलेराइटों को समय के संदेश की मुहर खोली और वो 144,000 के इतिहास में, जो तीसरे स्वर्गदूत का इतिहास है, संख्याओं के संदेश की मुहर खोलता है।
प्रतीकात्मक भविष्य सूचक इतिहास, जैसे
मक्काबियों के विद्रोह द्वारा निरूपित 1776 से 1798 तक के 22 वर्ष छठे राज्य के आरंभ के कारण और पांचवें राज्य के समापन के कारण की पहचान कराते हैं। 22वें राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड उन राष्ट्रपतियों में अल्फा थे जो ओमेगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिरूप है, क्योंकि यही दो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दो असतत कार्यकालों में सेवा की। जब उन अन्य राष्ट्रपतियों को भी सम्मिलित करके गिना जाता है जिन्होंने किसी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान पदभार संभाला था, साथ ही उन राष्ट्रपतियों को भी जिन्होंने स्वयं दूसरा कार्यकाल जीता, तब ट्रंप दूसरा कार्यकाल जीताने वाले 22वें राष्ट्रपति हैं। बाइबिलीय भविष्यवाणी का छठा राज्य स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद के 22 वर्षों के उपरांत 1798 में प्रारंभ हुआ। 1798 से 2026 तक को अल्फा तिथि पर 22 और ओमेगा तिथि पर 22 द्वारा निरूपित किया गया है। 11 अध्यायों की 3 श्रृंखलाएं हैं जो 11वें अध्याय से आरंभ होकर 22वें अध्याय पर समाप्त होती हैं। इन तीनों 11 अध्यायी श्रृंखलाओं में से प्रत्येक में 3 पदों द्वारा निरूपित एक सटीक मध्य बिंदु है। उत्पत्ति ये निर्दिष्ट करती है कि खतना कब चुनी हुई प्रजा के साथ वाचा संबंध के प्रतीक के रूप में दिया गया। ये पहला अवसर था जब किसी चुनी हुई प्रजा को वाचा जन होने का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चिन्ह दिया गया, और मत्ती में मध्य के 3 पद उस चट्टान की पहचान कराते हैं जिस पर मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे। वे पद उस समय को निर्दिष्ट करते हैं जब शमौन बर योना का नाम बदलकर पतरस रखा गया, जो 144,000 के समतुल्य है। प्रकाशित वाक्य की उस श्रृंखला का मध्य बिंदु मृत्यु की वाचा की पहचान कराता है, क्योंकि वो पापसी को उस 8वें सिर के रूप में निरूपित करता है जो 7 में से है। आप क्या अनुमान लगाते हैं इस तथ्य के निहितार्थ क्या है कि युगों की अभिलाषा के अध्याय 11 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश की पहचान कराई गई है और अध्याय 22 में यूहन्ना की मृत्यु की पहचान कराई गई है? उन अध्यायों का मध्य भाग आपको पृष्ठ 1818 पर ले जाता है, जहां निकुदेमुस शीर्षक अध्याय आरंभ होता है। अध्याय 11 का शीर्षक बपतिस्मा है और अध्याय 22 का शीर्षक यूहन्ना का कारावास और मृत्यु है। अध्याय 11 मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का प्रतीक है। उसी प्रकार अध्याय 17 और निकुदेमुस भी हैं, और उसी प्रकार यूहन्ना की मृत्यु भी है। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।